नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो कल हमने कथा को विराम दिया था, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, वो अब जब मिथिला में प्रवेश किए ही हैं और अहिल्या की कुटी को देखते हैं और अहिल्या का उद्धार करते हैं प्रभु श्री राम, और अहिल्या उद्धार के पश्चात अब जब वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर जनक महाराज वो महायज्ञ कर रहे हैं, और वहां पर थोड़ी भीड़ देखते हैं प्रभु श्री राम, परंतु जैसे ही ये तीनों उस स्थान में प्रवेश करते हैं तो तुरंत सभी वहां की जो भीड़ थी वो केवल अब भगवान श्री राम को निहार रहे थे, और एकटक होकर जो कुछ वहां पर चल रहा था वो सब कुछ शांत हुआ और सभी केवल इनकी सुंदरता को देख रहे थे। और उसी समय समाचार पहुंचता है जनक महाराज को कि विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण दशरथ के दो पुत्रों के साथ आए हैं। हालांकि जनक महाराज कभी देखे नहीं थे राम और लक्ष्मण को, परंतु सुना था उनके विषय में। तो सबसे पहले वो विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए आए और अपने गुरु शतानंद के साथ, तो वहां पर वो सबसे पहले विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं। और जब विश्वामित्र मुनि जब जनक महाराज स्वागत कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि का, तो उनकी नजर प्रभु श्री रामचंद्र जी से हट नहीं रही। हालांकि स्वागत कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि का, परंतु बार बार वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि समझ गए कि यहां पर स्वागत इनका होना चाहिए, तो इनका परिचय मैं जल्द ही दे देता हूं ताकि जनक महाराज इस दुविधा में न रहे। तो परिचय देते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का, दशरथ नंदन, और किस प्रकार से इन्होंने ताटका, मारीच और सुबाहु का वध किया। तो जनक महाराज जैसे ही रामचंद्र जी के विषय में सुनते हैं उनका परिचय, तो जनक महाराज कहते हैं भद्रम ते रामचंद्र जी को, कि आपका भद्र हो। भद्र कहते हैं मंगल हो। और आचार्य बताते हैं कि कई बार प्रभु श्री राम को इस प्रकार का आशीर्वाद मिला इस बालकांड में, भद्रम ते, कि आपका भद्र हो। तो यहां पर जनक महाराज जब कह रहे हैं आपका भद्रम हो, उसका एक और अर्थ यह बताते हैं कि वास्तविक रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस आशीर्वाद की आवश्यकता थी जब तक कि उनका विवाह सीता से नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक मंगल वो सीता के साथ ही रामचंद्र जी को मिला। जो भी भद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिलने वाला था वो सीता के विवाह के पश्चात मिलने वाला था। तो जनक महाराज ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तक मैं आशीर्वाद दे रहा हूं भद्रम ते, परंतु मैं उस भद्र को दूंगा तुम्हें जो वास्तविक रूप में सुभद्रे, जो वास्तविक रूप में सब मंगल लेकर आएगी आपके लिए। और सीता आने के पश्चात फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में वो जो वास्तविक मंगल वो चाहते थे या होना था वो हुआ। तब फिर आगे जनक महाराज क्योंकि वो व्यस्त थे यज्ञ में, तो उन्होंने सब व्यवस्था की इनकी, और वो वहां से निकल पड़े। इनके स्वागत करने के पश्चात, इनकी व्यवस्था करने के पश्चात, और शतानंद जी जो गुरु जनक महाराज के, उन्होंने रामचंद्र जी को देखा और उन्होंने पूछा कि क्या आप उस कुटिया से गुजरे जहां पर अहिल्या थी? तो विश्वामित्र मुनि ने फिर पूरा समाचार सुनाया कि किस प्रकार से अहिल्या का उद्धार भी कर दिए हैं ये। तो शतानंद जी इतने खुश हुए क्योंकि अहिल्या और गौतम के पुत्र थे शतानंद, और इतने वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो व्यक्ति आएंगे जो आकर मेरी माता का उद्धार करेंगे। तो इतने वो प्रसन्न हुए और वो गुणगान करने लगे विश्वामित्र मुनि का, क्योंकि विश्वामित्र मुनि ही लाए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उस रास्ते से। तो वो गुणगान कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि का, और पूरा इतिहास विश्वामित्र मुनि का रामचंद्र जी को सुना रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए कि स्वयं विश्वामित्र मुनि उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया होगा इन्हें, क्योंकि वो नम्र हैं तो अपने बारे में नहीं बताया होगा, इसलिए मैं बताता हूं विश्वामित्र मुनि के बारे में। तो अब तक प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से सब कुछ पूछ रहे थे कि ये जगह क्या है और ये प्रांत कौन सा है, इसका इतिहास क्या है, परंतु अब तक उन्होंने विश्वामित्र मुनि का इतिहास नहीं पूछा था। तो यहां पर जनक महाराज के गुरु शतानंद वो अब विश्वामित्र मुनि का इतिहास बता रहे हैं, और बहुत लंबा इतिहास है विश्वामित्र मुनि का, बहुत कुछ उसमें से हमने सुना भी है। तो उस रात वो विश्राम करते हैं और दूसरे दिन फिर से जनक महाराज आते हैं, और अब विश्वामित्र मुनि जनक महाराज से पूछते हैं कि हम यहां पर आए हैं, एक प्रयोजन तो है कि आपका ये जो यज्ञ है इसमें भाग लें इसे देखने के लिए, परंतु एक और प्रयोजन हमारा यह था कि इस यज्ञ में जो शिव धनुष आपने रखा है सो उस शिव धनुष का दर्शन करना चाहते हैं राम और लक्ष्मण। तब जनक महाराज, जो उनके अंदर एक आशा उत्पन्न हो रही थी कि ये शिव धनुष शायद ये राम जो हैं वही प्रत्यंचा चढ़ाकर कुछ कर सकते हैं इसका, तो बहुत आतुर हुए। वो पहले से सोच रहे थे कि क्या मैं इन्हें वो शिव धनुष दिखा सकता हूं, और यहां पर विश्वामित्र मुनि पूछ बैठे। तो जनक महाराज पहले वो इसका इतिहास बताते हैं कि ये शिव धनुष कैसे मिला इनके वंश को। तो कहते हैं दक्ष यज्ञ हो रहा था, एक समय की बात है, और उस दक्ष यज्ञ में शिवजी का अपमान हुआ और क्रोध अवस्था में शिवजी शिव धनुष निकालकर सारे देवताओं को खत्म करना चाहते थे। तभी वो याचना करने लगे और अंत में उन्होंने शिवजी को इतना प्रसन्न कर दिया, क्योंकि आशुतोष हैं वो, तो शिवजी ने ये शिव धनुष देवताओं को दे दिया, और ये देवतागण उस शिव धनुष को लेकर उन्होंने रखा अपने पास, परंतु जब उन्हें पता लगा कि आगे चलकर ये शिव धनुष ये एक सहायक रहेगा सीता स्वयंवर में, स्वयं लक्ष्मी और नारायण के विवाह में, तो उन्होंने फिर देवरथ नाम के राजा जो कि इनके पूर्वज हुए जनक महाराज के, उनको वो धनुष दिया और उनके वंश में आगे फिर ये धनुष अब जनक महाराज के महल में था। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि वो तो ठीक है कि आपके महल में ये शिव धनुष है, परंतु कुछ मुझे समस्या लग रही है आपके अंदर ये शिव धनुष को लेकर। तो जनक महाराज के चेहरे पर कुछ समस्या थी शिव धनुष को लेकर। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि क्या ये समस्या है शिव धनुष को लेकर, आपको तो खुश होना चाहिए, अति प्रसन्न होना चाहिए कि शिव जी का धनुष आपके पास है। तो जनक महाराज फिर कहते हैं कि एक समय की बात है जब मैं इसी प्रकार का यज्ञ कराना चाहता था और जब यज्ञ भूमि तैयार की जा रही थी तो हल से जब यज्ञ भूमि खोदी गई तो वहां पर मैंने एक छोटी सी बालिका पाई, और क्योंकि गड्ढे को सीत भी कहते हैं तो मुझे लगा कि भगवान ने ये छोटी सी बालिका मुझे भेजी है, इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया सीता। तो क्योंकि वो सीत में पाई गई थी इसलिए उनका नाम हुआ सीता। तो आगे वो कहते हैं कि सीता इतनी सुंदर, सर्वगुण संपन्न और सुशील, सब प्रकार के अच्छे गुण इसके अंदर थे, तो मैं सोच रहा था कि कौन वो व्यक्ति है जो इससे विवाह करेगा। तो ऐसे सोचते हुए एक दिन मैं क्या देखता हूं कि सीता जब पहुंच रही थी ये कक्ष जहां पर शिव धनुष रखा हुआ था, तो शिव धनुष इतना बड़ा, इसके विषय में कहा गया है कि जब इस शिव धनुष को भेजा गया तो केवल जनक महाराज के महल में लाने के लिए, इसे खींचने के लिए 5000 मुष्टंडे लगे, 5000 इसे खींचकर महल में लाने के लिए। और जनक महाराज क्या देखते हैं एक दिन, सीता देवी वो साफ कर रही थी शिव धनुष के नीचे शिव धनुष को। तो जैसे हम जब कुछ पहुंचते हैं तो यदि कुछ चीज बीच में आ रही तो उसे उठा देते हैं, तो सीता ने उस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा दिया और साफ कर रख दिया। तो अब जनक महाराज वो सोच रहे हैं, अरे इसका फोटो लेना चाहिए था या इसका कोई रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। ये शिव धनुष जिसको अच्छे अच्छे हिला सक नहीं सकते, ये सीता ने बाएं हाथ से उठाकर वहां झाड़ू पोछा लगाकर रख दिया फिर से। तो जनक महाराज ने फिर निर्णय लिया कि सीता का विवाह उसी व्यक्ति से होना चाहिए जो व्यक्ति न केवल इसे उठा पाए बल्कि इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा पाए, और यदि उस प्रत्यंचा को चढ़ाते यदि इसे तोड़ भी दे, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति हो वही व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता है। क्योंकि यदि सीता बाएं हाथ से इसे उठा सकती है तो फिर इतना तो शक्ति पति में होनी चाहिए जो सीता से विवाह करेंगे कि उठाकर प्रत्यंचा जो चढ़ा दे उस धनुष के ऊपर नहीं तो हॉरोस्कोप मैच नहीं होगा। हाँ? तो अब ये नियम लगा दिया सीता के विवाह के लिए। परंतु यहां पर अब अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए और उसमें सीता स्वयंवर के लिए इस धनुष को रखा और ये नियम लगाया, और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी अतिरथी वो आए और उन्होंने प्रयास किया इस धनुष को उठाने का, परंतु इस धनुष को वो एक थोड़ा सा इंच भी हिला नहीं पाए, उठाना तो दूर की बात। रावण भी आया था, रावण ने पहले ही सब कुछ कर हार चुका था, तो रावण से भी ये धनुष हिला तक नहीं, हालांकि रावण भक्त है शिव जी का। तो महाराज जनक बहुत व्याकुल हुए और थोड़े दुखी हो गए कि पता नहीं मैंने ये ठीक नियम लगाया है कि नहीं, अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा, पता नहीं है भी कि नहीं सृष्टि में जो इस प्रकार का पराक्रम दिखा पाए। तो इसीलिए उनके ऊपर, उनके चेहरे पर वो व्याकुलता दिख रही थी। तो परंतु रामचंद्र जी को जब देख रहे थे जनक महाराज, तो उन्हें थोड़ा एहसास हो रहा था कि शायद ये वो व्यक्ति है जो कर पाएंगे इसे। तो तुरंत उन्होंने विश्वामित्र मुनि से कहा कि क्यों नहीं रामचंद्र जी को ये कार्य दिया जाए। तो यहां पर अब वो स्वयंवर की रचना होती है और वहां पर प्रभु श्री राम जाते हैं और 5000 मुष्टंडे खींचकर पहले शिव धनुष को लाते हैं, और बाकी सारे जो राजा वहां पर एकत्रित हैं वो जब देखते हैं रामचंद्र जी को तो थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि 5000 मुष्टंडे लगे हैं इसे केवल खींचकर यहां पर लाने के लिए, और ये छोटा सा बालक नव युवक जो इतना कोमल दिख रहा है, वो इसके सारे अंग इतने कोमल दिख रहे हैं, क्या ये ठीक से एक नजर में देख तो पाएगा इस शिव धनुष को? एक नजर में कोई देख भी नहीं पाता था। तो शिव धनुष जब सामने लाया गया तो इतना विशाल ये शिव धनुष और एक लोहे के बक्से में, बड़े विशाल बक्से में इसे रखा हुआ था। तो जब उसे खोला गया तो सबसे पहले प्रभु श्री राम इसे प्रणाम करते हैं और फिर विश्वामित्र मुनि के समक्ष जाकर अनुमति लेते हैं। ऐसा नहीं कि चलो इसे अभी टूट पड़ो और उठा लो और दिखा दो सबको कि मैं कौन हूं। सबसे पहले वो अनुमति लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं विश्वामित्र मुनि का। और जब विश्वामित्र मुनि आशीर्वाद देते हैं उसके पश्चात वो प्रदक्षिणा करते हैं शिव धनुष की और अपने बाएं हाथ से सबसे पहले तो उठा लेते हैं इसे, और तुरंत उसी क्षण में उसे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। और जैसे ही प्रत्यंचा वो चढ़ाते हैं तो वो जो धनुष है वो झुकने लगता है, मुड़ने लगता है, और सभी वहां जो एकत्रित हुए थे, राजा, जनक महाराज, सभी इस प्रकार से उनका जो हृदय की धड़कन है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए जब इस दृश्य को वो देख रहे हैं। और जनक महाराज इतने प्रसन्न होते हैं कि आखिरकार मिल गया मुझे वो व्यक्ति, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष टूट जाता है। बोलो श्री रामचंद्र की। परंतु जब वो धनुष टूटता है और उस धनुष के टूटने की जो गर्जना होती है, इतनी महाभयंकर गर्जना होती है उसके टूटने की कि वहां पर उपस्थित जितने भी व्यक्ति, द्वारपाल, राजा, मंत्री, जो कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे, केवल 4 को छोड़कर, जनक महाराज, विश्वामित्र मुनि, राम और लक्ष्मण, इन 4 को छोड़कर सभी बेहोश होकर गिर जाते। कि भगवान उसे तोड़ दे इन सब के कानों को बचा लेते हैं भगवान, तो बाकी सब वहां पर बेहोश। और तुरंत जनक महाराज फिर समाचार भेजते हैं अयोध्या कि विवाह यहां पर हमने आयोजित किया है, और समाचार भेजते हैं दशरथ महाराज को। ऐसा नहीं कि फिर जाकर फोटो भेजा है सीता का, थोड़ा देखो फोटो कि आपको जची कि नहीं, हा? फिर जाकर किसी पंडित को बुलाकर कुंडली लगाई, हा? फिर बाद में सगाई, और उसके बाद में फिर विवाह, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत समाचार भेजा गया कि यहां पर विश्वामित्र मुनि उपस्थित हैं और हमने इस प्रकार से निर्णय लिया है कि आपके प्रभु श्री राम इनके साथ सीता का विवाह हो। तो दशरथ महाराज जैसे ही ये समाचार सुनते इतने प्रसन्न होते हैं दशरथ महाराज कि पहले वो थोड़ा रंज रखे थे कि विश्वामित्र मुनि ले गए कैसे, तो कर इतना मैंने प्रयास किया रामचंद्र जी को रुका कर रखने के लिए, परंतु ये विश्वामित्र मुनि ले गए। परंतु अब जब उन्होंने ये समाचार सुना कि विश्वामित्र मुनि ले गए उन्हें मिथिला और वहां पर विवाह अब उनका आयोजित होने वाला है, तो इतने प्रसन्न हुए दशरथ महाराज कि तुरंत उन्होंने समाचार दिया कि, और जनक महाराज वो अनुमति ले रहे हैं दशरथ से कि मेरा जो 12 दिन का महायज्ञ है ये संपन्न होने के पश्चात 13वें दिन यदि आप ठीक समझें तो हम राम और सीता का विवाह करें। तो महाराज दशरथ वो कहते हैं कि आप दान में दे रहे हैं सीता को, तो आप हैं दानी और हम हैं जो दान लेंगे आपसे। तो जो दान लेने वाला होता है वो हर समय नीचा होता है दान देने वाले से, तो आप अनुमति मत लीजिए हमसे, हमें तैयार कीजिए इस दान को ग्रहण करने के लिए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज वो जनक महाराज को कहते हैं और सभी तैयारियां होती हैं। जनक महाराज अपने भाई कुशध्वज को बुलाते हैं और उस समय जनक महाराज दशरथ के समक्ष ये एक प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना एक और मेरी पुत्री है जिनका नाम है उर्मिला, तो क्यों ना उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से किया जाए। तो दशरथ महाराज कहते हैं तो सोने पे सुहागा। और तब विश्वामित्र मुनि आगे आकर कहते हैं एक और प्रस्ताव मेरा है कि जनक महाराज आपके भाई कुशध्वज उनकी भी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है मांडवी एक का नाम है श्रुतकीर्ति, क्यों ना इन दोनों पुत्रियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से किया जाए, दो को क्यों बाकी छोड़ दिया जाए। तो फिर दशरथ महाराज तो और प्रसन्न हुए, सोने पे सुहागे पे सोना, पता नहीं ऐसे कुछ होता है परंतु यहां पर हो रहा था। तो अब सब कुछ निश्चित हुआ कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ, प्रभु श्री राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ। तो सब जगह पर आनंद ही आनंद, मिथिला में अयोध्या में सब जगह आनंद ही आनंद। उस समय युथजित नाम के योद्धा वहां पर पहुंचे जो कि भरत के मामा थे और वो कैकेयी के भाई हुए, और कैकेयी के पिता का नाम था केकय। तो महाराज केकय उनके पुत्र युथजित वो आए वहां पर, उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये सब कुछ अभी भरत का विवाह होने जा रहा है, वो तो भरत को लेने आए थे कि बहुत दिन हुआ इनके दादा इनसे मिलना चाहते हैं देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो भरत को ले जाने आए थे। परंतु यहां पर तो अब विवाह होने वाला है तो उसमें भाग लेने लगे वो। और बहुत ही सुंदर तरीके से विवाह कार्यक्रम वहां पर, आप देखिए कौन कौन से महर्षि थे विवाह करने के लिए, कोई साधारण रामघाट के पंडित को नहीं बुलाया था। जो विवाह के साथ अंत्येष्टि संस्कार सब कुछ एक साथ कर दें कि एक साथ सभी कर देते हैं, विवाह संस्कार भी कर देते हैं, अंत्येष्टि भी कर देते हैं, आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है। परंतु कौन से पुरोहित थे यहां पर? विश्वामित्र मुनि स्वयं, वशिष्ठ मुनि स्वयं, और ये शतानंद जो जनक महाराज के गुरु, ये तीन महान ऋषिगण यहां पर विवाह संपन्न करने के लिए थे। और इस प्रकार से जनक महाराज ने पहले जो विधि होती है उसके अनुसार प्रण लिया और प्रण दिलाया सीता को और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाया। उसे कहते हैं हाथ लिया सीता का, और सीता का हाथ पहले अपने हाथ में लेकर फिर प्रण लिया कि ये सीता जो है, अलग अलग उल्लेख किया सीता को। सीता को उन्होंने कहा रामचंद्र जी को बताते हुए कि ये, इसका एक नाम है पतिव्रता और इसे महाभागा भी कहते हैं, और इसे कहेंगे छायेव अनुगत और इसे अयोनिज ये भी नाम से जाना जाता है। तो ये चारों के अर्थ क्या है ये आचार्य बताते हैं कि जनक महाराज वो कह रहे थे कि सीता पतिव्रता होगी। यहां पर पतिव्रता का अर्थ है कि प्रभु श्री राम जो उनके पति बने हैं अब, तो प्रभु श्री राम इन्होंने जो व्रत लिया, और वो कौन सा व्रत लिया है? रावण का संहार करने का। तो सीता को पतिव्रता कहा है कि ये आपके उस व्रत को पूरा करने में सहायक रहेगी, और सीता के ही कारण रावण का वध हुआ। तो इसीलिए सीता को यहां पर जनक महाराज कह रहे हैं पतिव्रत। और फिर वो सीता को कहते हैं महाभाग, इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य चाहता है वो केवल सीता से ही पा सकता है। और बताया गया है कि सीता को महाभाग इसलिए भी कहा क्योंकि रामचंद्र जी के जाने से पहले सीता जाएगी लंका और वहां जाकर उनका भाग्य उदित करेगी, रावण का और रावण के जितने भी राक्षसी पार्षद हैं उनका। क्योंकि जब तक सीता भाग्य उदित नहीं करती किसी बद्ध जीवात्मा का, तब तक राम की कृपा नहीं मिल पाती। इसीलिए यहां पर सीता को महाभाग कहा गया है कि वो राम से पहले जाएगी लंका। यदि सीता पहले लंका नहीं गई होती तो रामचंद्र जी देखते भी नहीं इनका उद्धार करने के लिए इनकी तरफ। परंतु क्योंकि सीता ने जाकर इनका भाग्य उदित किया अपना संग देकर, तब फिर प्रभु रामचंद्र जी ने इनका उद्धार किया और सीता को कहा छायेव अनुगत, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की छाया हर समय उसके साथ रहती है, उसी प्रकार से सीता जहां कहीं पर भी आप रहेंगे वहां पर ये आपके साथ रहेंगी। और फिर उन्होंने सीता को उल्लेख कर कहा अयोनिज, इसका अर्थ है कि सीता किसी भौतिक जो माता पिता है उनसे उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए इनका नाम है अयोनिज। और इस दिन राम सीता के विवाह के पश्चात अब राम को नाम मिला श्री राम, कि अब वो केवल राम नहीं बल्कि वो श्री के पति हुए हैं, इसलिए अब उनको नाम मिला श्री राम, सो अब से वो श्री राम कहलाए जाएंगे। और इस प्रकार से फिर पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है जानते हैं आप? जब वर वधु उनका हाथ दिया जाता है तो हाथ देने को कहते हैं पाणी ग्रहण। पंडित जी पाणी ग्रहण उसे कहते हैं जब हाथ ग्रहण किया जाए। हालांकि आजकल पाणी ग्रहण के बाद फिर सूर्य ग्रहण हो जाता है लोगों के जीवन में बाद में, तो यहां पर अब ये जनक महाराज वो पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं सीता और राम का। और इस प्रकार से इन सब का विवाह संपन्न होता है। और यहां पर सीता और राम इन दोनों के गुणों के विषय में बताया गया है। कहा गया है कि सीता और राम दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर है उनकी कृपा को लेकर, कि दोनों में अधिक कृपालु कौन है राम और सीता में। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि हालांकि वो सर्व कृपालय हैं, कृपा का आलय है वो, परंतु जब कोई व्यक्ति शरणागत होता है जाकर प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर, तब जाकर वो अपनी कृपा देते हैं उस व्यक्ति को। जैसे विभीषण, विभीषण स्वयं आए और उन्होंने अपनी शरणागति दिखाई, शरणागत जब वो हुए आकर, तब जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अभय प्रदान दिया। परंतु माता सीता के विषय में कहा गया है कि कोई व्यक्ति आने से पहले सीता वहां पहुंच जाती हैं अपनी कृपा देने के लिए, वो किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करती आकर शरणागत होने के लिए। तो विभीषण आए और उन्होंने शरणागत हुए वो, परंतु सीता स्वयं गई लंका और उन्होंने वो सारे जो राक्षसियां थी त्रिजटा और बाकी सब, उन सब को सीता कहती हैं कि मैं जानती हूं कि आप लोग सब यहां पर रावण के राज्य में त्रस्त हो, अत्याचार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, परंतु जब राम आएंगे तो मैं सबसे पहले राम से कहूंगी कि इन्हें मुक्ति दो यहां से। तो ये है सीता देवी का गुण कि वो स्वयं जाती है बद्ध जीवात्माओं के पास और उनका उद्धार करने के लिए, यदि वो शरणागत हो या न हो। तो इसीलिए ये जो अंतर है दोनों की कृपा में, तो सीता देवी जो है वो ज्यादा कृपालु हैं। और बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा की है, थोड़ा ध्यान से सुनिए अब, थोड़ा सा इसे समझने के लिए आप लोगों को जगा हुआ रहना होगा कि ये जो धनुष प्रभु श्री राम ने तोड़ा, जिसे कहते हैं धनुर्भंजन, तो ये जो धनुष प्रभु श्री राम इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ा, तो ये सब किसका प्रतीक था? बहुत ही सुंदर हमारे आचार्यों ने बताया है ये धनुर्भंजन की लीला प्रभु श्री राम की। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? सब जगे हुए हैं? तो कहा गया है कि ये जो धनुष, शिव धनुष शिव जी का, ये प्रतीक है प्रणव ओमकार। जो ओमकार है जिसके विषय में गीता में भी भगवान कहते हैं, तो ये जो ओमकार नाम है ये ज्ञात करता है परम सत्य। ये परम सत्य को ओमकार नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो नाम है ओमकार, नाम का अर्थ होता है नमति, नमति का अर्थ होता है किसके सामने झुकना, नमन करना, वहां से आता है नाम। तो ये जो ओमकार नाम है ये प्रतीक है उस धनुष का। तो ये जो ओमकार है ये अब तक किसी के सामने झुका नहीं। इतने सारे राजा आए और उन्होंने प्रयास किया इस धनुष को जो कि ओमकार का प्रतीक है इसे झुकाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, परंतु ये किसी के सामने झुका नहीं ये धनुष। क्यों? क्योंकि ओमकार जो नाम है ये परम सत्य को उल्लेख कर रहा है। तो ये जो साधारण से राजा आए और उन्होंने प्रयास किया तो ओमकार क्या उनके सामने झुकने वाला था? ओमकार केवल एक ही नाम के सामने झुक सकता है और वो है राम नाम। क्योंकि भगवान के नामों में कुछ नाम होते हैं जिन्हें कहा गया है गौण नाम और कुछ नाम होते हैं भगवान के जिन्हें कहा गया है मुख्य नाम। तो हम थोड़ा आपसे परीक्षा आपकी लेते हैं, बताइए कौन कौन से भगवान के मुख्य नाम हैं और कौन कौन से गौण नाम हैं, कोई जानता है? गौण नाम कौन कौन से हुए भगवान के? परमात्मा, परमेश्वर, ओमकार, ईश्वर, ये सारे जो केवल भगवान के लीलाओं को नहीं बल्कि कुछ उनके जो ऐश्वर्य के गुण हैं उन्हें दर्शा रहे हैं। तो ये सब जो नाम परम सत्य, मायावादी ये सब नामों में बहुत रुचि लेते हैं, तो ये सारे जो नाम हैं इन्हें गौण नाम कहा गया है। और मुख्य नाम भगवान के जैसे मधुसूदन, गोपीनाथ, राम, ये सारे जो नाम हैं ये मुख्य नाम है, कृष्ण, ये सब मुख्य नाम है भगवान के। तो अब धनुष जो कि गौण नाम का प्रतीक है इनके सामने कौन आ गए हैं? आज मुख्य नाम स्वयं श्री राम। तब तो झुकना ही था इस धनुष को, इस ओमकार को राम के नाम के सामने झुकना ही था। तो कई बार लोग पूछते हैं कि मुझे ओम का जप करना चाहिए कि आपके हरे कृष्ण महामंत्र का? तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो रामचंद्र जी का नाम उसके अंदर है, ये मुख्य नाम है और सारे गौण नाम जो है परम सत्य के भगवान के वो सब उसके अंदर सम्मिलित हैं। तो यदि हम भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, कैसे गाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का ये मुख्य नाम इसका कीर्तन करते हैं तो अनगिनत भगवान के जो गौण नाम हैं उनका अपने आप हमने कीर्तन कर लिया है। तो इस धनुष को झुकना ही था भगवान श्री राम के समक्ष। और आचार्य बताते हैं कि इस धनुष को यदि हम देखें, जैसे धनुष आपने देखा होगा ड्रामा में लोग लेकर आ रहे थे इतनी बार, हालांकि कोई तीर नहीं था, ऐसे ही धनुष लेकर घूम रहे थे। तो हो सकता है जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा उनमें गुण हो सके कई बार। तो प्रभु राम को यदि किसी को मारना था तो धनुष के साथ बाण भी चलाते थे, यहां पर बिना बाण के ही ये लोग मार रहे थे सबको। तो धनुष में आप पाएंगे दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग होता है, एक निचला भाग होता है, और बीच में वो जो दोनों भाग जिससे जुड़े रहते हैं, तो ऊपरी भाग और निचला भाग और रस्सी होती है, प्रत्यंचा जिसे कहते हैं। तो ये तीन भाग आप देखेंगे एक धनुष में। तो कहा गया है कि जो ऊपरी भाग है, जैसे कि ओमकार इसका प्रतीक है, तो ओमकार में भी तीन भाग होते हैं, अ उ और म ओमकार में। तो अ कहेंगे आकार को, उ कहेंगे उकार को और म कहेंगे मकार को। तो इस प्रकार से ये ओमकार ये नाम बनता है। उसी प्रकार से धनुष तीन भागों से बना है, ऊपरी भाग, निचला भाग और प्रत्यंचा रस्सी। तो जो अकार है ओमकार का वो प्रभु श्री राम को उल्लेख कर रहा है, और जो उकार है वो उल्लेख कर रहा है लक्ष्मी को या सीता देवी को, और जो मकार है वो उल्लेख कर रहा है हम जीवात्माओं को। तो इस धनुष में जो तीन भाग है उनको यदि हम इन तीनों से लें, रामचंद्र जी, सीता देवी और जीवात्मा, तो जो ऊपर वाला भाग है वो हुआ अकार उस ओमकार का, और वो हुआ प्रतीक प्रभु श्री राम का। जो निचला भाग वो हुआ मकार, और वो प्रतीक हुआ किसका? जीवात्मा का। और जो रस्सी प्रत्यंचा उसे क्या कहा गया है? उकार, तो वो प्रतीक हुई सीता। तो जो धनुष का ऊपरी भाग होता है और जो नीचा वाला भाग होता है उसे कौन जोड़ता है? वो प्रत्यंचा जोड़ती है। तो अब तक किसी ने उस प्रत्यंचा को जोड़ा नहीं था, तो प्रभु श्री राम और जीवात्मा उनको कौन जोड़ता है? सीता। जैसे उस धनुष में उस प्रत्यंचा ने ऊपरी भाग और निचले भाग को जोड़ा, तो उसी प्रकार से सीता राम या सीता रामचंद्र जी का जो विवाह है उसे समझना इस प्रकार से है हमें कि जब जीवात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी से उसका मिलन होता है और वो मिलन कराती हैं श्री सीता देवी, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई इस धनुष के ऊपर, और इसीलिए इसे कहते हैं सीता कल्याण। इस विवाह को जैसे कई बार आप देखेंगे कल्याण मंडप होता है, एक कल्याण मंडप का अर्थ क्या है? जहां पर कल्याण हो। कल्याण का एक और अर्थ है विवाह, जहां पर वर वधु का कल्याण होता है, कल्याण होना चाहिए, उसे कहते हैं कल्याण मंडप जहां पर होता है। तो यहां पर इस प्रसंग को सीता कल्याण कहा गया है, और वास्तविक रूप में सीता कल्याण इसे इसलिए कहा गया है कि सीता कल्याण कर रही है हम जीवात्माओं के ऊपर। सीता का कौन कल्याण करेगा? वो तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, तो सीता कल्याण करती है हमारे ऊपर, इसलिए सीता कल्याण कहा गया है इसे। तो इस प्रकार से तो समझ में आया आप लोगों को? हाँ? सब जगह हुए थे ना। अभी यदि परीक्षा ली जाए तो बताएंगे अकार, उकार, मकार और धनुष के तीन भाग ये सब कौन कौन है, तो कल परीक्षा लेंगे आप लोगों की। तो आगे जब विवाह संपन्न होने के पश्चात अब सभी निकल पड़े हैं अयोध्या की तरफ, तो रास्ते में परशुराम जी आते हैं, और परशुराम जी आप लोग जानते होंगे वो ज्यादातर क्रोध में ही रहते हैं। हाँ? थोड़ा मर्क्यूरी का लेवल ऊपर रहता है, पारे का लेवल। तो परशुराम जी क्रोधित अवस्था में सामने रोक देते हैं रथ को, और अब दशरथ मुनि, दशरथ महाराज, वो थोड़ा अब ये ऋषि मुनियों से थोड़ा डरने लगे कि ये ऋषि मुनि जब भी आते हैं ले चल ले जाते हैं मेरे बच्चे को कहां। तो कई बार माता पिता थोड़ा ब्रह्मचारी से डरते हैं, बेटा यदि ज्यादा ब्रह्मचारी के साथ संग कर रहा है तो सावधान, कि उससे सावधान रहो और शुभ मंगल सावधान, वो सावधानी को अपनाओ। तो यहां पर जैसे ही परशुराम जी अब देखते हैं, दशरथ महाराज देखते हैं कि अब परशुराम जी एक और कौन आ गए, तो तुरंत रथ रुकवा लेते हैं परशुराम जी और रामचंद्र जी को उतरवा कर पूछते हैं कि मैंने सुना और मैंने आवाज भी सुनी, शिव धनुष जो तोड़ा है बहुत जोर से आवाज आई उसकी और पता लग गया है मुझे, सब पेपरों में खबर है कि शिव धनुष तोड़ा है, परंतु मेरे पास उससे भी अधिक शक्तिशाली धनुष है और यदि वास्तविक रूप में तुम शक्तिशाली हो तो इसे तोड़कर बताओ, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर बताओ, यह है विष्णु धनुष। वो तो शिव धनुष परंतु मेरे पास विष्णु का धनुष है और ये धनुष उन्हें उनके दादाजी से मिला था जिनका नाम था ऋचिक, और परशुराम जी के पिता का नाम क्या था? जमदग्नि। तो जमदग्नि जी के पिता का नाम था ऋचिक और उनसे ये विष्णु धनुष मिला था। तो अब ये विष्णु धनुष किसके सामने प्रकट कर रहे हैं? विष्णु को दे रहे हैं उनका ही धनुष और कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो अब परशुराम जी कहते हैं कि यदि प्रत्यंचा चढ़ा दी तब मुझसे युद्ध करना होगा। तो ये क्या भाई, चित भी अपनी पट भी अपनी। तो महाराज दशरथ बीच में इस वार्तालाप को रोकते हैं और कहते हैं देखिए अभी अभी विवाह हुआ है और इन्होंने शिव धनुष तोड़ा है, कुछ अगर गलती हो तो क्षमा हम मांगते हैं, परंतु ये सब नियम मत रखो अब। तो प्रभु रामचंद्र जी दशरथ महाराज को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, और तुरंत उस धनुष को लेते हैं और एक ही क्षण में उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बाण को साध लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बाण मैं किस पर चलाऊं परशुराम जी, क्योंकि ये विष्णु का धनुष है और इसमें जो बाण चढ़ा दी है मैंने, ये बाण जाएगा ही, विफल नहीं जाने जाएगा ये बाण। तो जितने भी प्रांत आपने जीते हैं आपकी शक्ति से, या तो वो प्रांत सारे खत्म होंगे या आप, तो बोलो क्या चाहते हो। और तब परशुराम जी समझ गए कि परशुराम जी के राम हैं ये। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे, मैंने कश्यप मुनि को ये वचन दिया है कि जो महेंद्र गिरी है वहां पर मैं तपस्या कर रहा हूं और मेरी तपस्या मैं पूरी करूंगा, तो कृपया करके आप मुझे मत मारिए, मेरे जितने भी सारे प्रांत हैं वो ले लीजिए, परंतु मुझे आप कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, क्षमा हुई, गलती हुई। तो वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें छोड़ देते हैं और वो पूछते हैं आता जी विष्णु धनुष इसका आप ही रखिए इसे। भाई केवल एक ही व्यक्ति इनके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था और वो है विष्णु और आप ही हैं वो विष्णु, तो आप ही का धनुष है, आप ही लीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वो शिव विष्णु धनुष को रख लेते हैं और इसके पश्चात वो सब अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंचने के पश्चात वहां पर सभी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी वो स्वागत करती हैं, पूरी अयोध्या नगरी वहां पर प्रतीक्षा कर रही थी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने समय से बाहर हैं अयोध्या के, फिर से आए हैं और अब सीता देवी आई हैं और सब उर्मिला और मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो ये सबका स्वागत हो रहा था। और उसी समय युधाजीत जो वहां पर आए थे, याद है कौन युधाजीत, जो मामा भरत के, तो वो आए और तब उन्होंने याद दिलाया कि अब तो सब कुछ हो गया है, तो मैं आया था इन्हें ले जाने के लिए। तब फिर दशरथ महाराज भरत को कहते हैं कि जाओ और कुछ समय बिताओ अपने दादा के साथ, नाना के साथ, नाना के पास कुछ समय बिताओ। और यहां पर संपन्न होता है रामायण का पहला कांड, बाल कांड, और इसके पश्चात प्रारंभ होगा कौन सा कांड, अयोध्या कांड। रामायण में जो श्रृंखला है कांडों की वो मैं कह रहा हूं, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अलग बात है, परंतु रामायण में सबसे पहले बाल कांड जो ये पूरा हुआ, सीता स्वयंवर के पश्चात अयोध्या जाते हैं, भरत महाराज कह के जाते हैं, और इसके पश्चात प्रारंभ होता है अब अयोध्या कांड। तो यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी तो हम अगले साल प्रारंभ करेंगे श्री अयोध्या कांड। आप लोगों की इच्छा है, तो यदि आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की कृपा होगी तो अगले साल हम प्रारंभ करेंगे रामनवमी के पर्व पर श्री अयोध्या कांड। और क्योंकि हनुमान जयंती आ रही सोमवार को, तो जैसा हमने सूचित किया था कि हम हनुमान जी के विषय में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, और रामायण में हनुमान जी के विषय में यदि चर्चा करनी है तो बिना सुंदरकांड लिए हम हनुमान जी की चर्चा नहीं कर सकते। और बहुत ही सुंदर वर्णन है सुंदरकांड में, किस प्रकार से हनुमान जी ने सेवा की सीताराम जी की। तो हम शुरू करते हैं सुंदरकांड, और जहां तक पहुंचेंगे उसके पश्चात कल सुबह हम उससे, उस कथा से आगे बढ़ेंगे कल सुबह और कल शाम को, और देखते हैं आगे कहां तक हम पहुंच पाते हैं हनुमान जी का गुणगान करते हुए। तो सुंदरकांड, जिसके पश्चात आता है युद्ध कांड, और युद्ध कांड के पश्चात उत्तरकांड। तो सुंदरकांड, इसके विषय में बताया गया है कि सुंदरकांड के तीन भाग हैं। सबसे पहला भाग जब सीता की खोज हो रही है, सीता की खोज, और सीता को हनुमान जी अब ढूंढ लेते हैं कहां पर, अशोक वन में, लंका में। तो पहला भाग सुंदरकांड का है सीता की खोज और ढूंढ लेना सीता जी को। दूसरा भाग सुंदरकांड का है जहां पर सीता के समक्ष अब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का क्या व्रत है और वो क्या मिशन लेकर आए हैं, वो सब कुछ उन्हें सीता जी को बता रहे हैं। ये दूसरा भाग है सुंदरकांड का। और तीसरा भाग, हनुमान जी एक ट्रेलर देते हैं रावण को कि सोच लो किससे लड़ने जा रहे हो तुम, और एक सैंपल लंका को जलाकर एक सैंपल देकर जाते हैं रावण को कि देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक शरणागत भक्त सेवक दास की पूंछ देखो क्या कर देगी तुम्हारे राज्य को। तो सोचो वो स्वामी जब आएंगे तो वो क्या करेंगे। तो वो जो सैंपल दिया रावण को प्रभु श्री राम की शक्ति का, वो तीसरा भाग है सुंदरकांड का। तो पहले भाग को कहते हैं अन्वेषण, दूसरे भाग को कहते हैं दर्शन, और तीसरे भाग को कहते हैं विरोधी विध्वंसनम। तो ये तीन भाग सुंदरकांड के हैं। और बहुत ही सुंदर आचार्य ने उत्प्रेक्षा की है, वो कहते हैं कि पूरे रामायण में तीन आचार्य हुए, तीन महानुभाव हुए जिन्होंने सीता को राम से मिलाया। तो सबसे पहले आचार्य कौन से हुए? विश्वामित्र मुनि, जिन्होंने सीता और राम का मिलन कराया बालकांड में। और दूसरे आचार्य हुए, दूसरे महानुभाव हुए जिन्होंने सीता और राम का मिलन कराया, वो थे वाल्मीकि मुनि उत्तरकांड में। तो जब सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा गया तो वहां से वाल्मीकि मुनि मिलन कराते हैं फिर से अंत में, रामायण के अंत में सीता और राम का। और हनुमान जी मिलन कराते हैं सुंदरकांड में सीता और राम का। तो ये तीन आचार्य हुए रामायण के अंदर जिन्होंने सीता और राम का मिलन कराया। और विश्वामित्र मुनि के विषय में कहा है कि जैसे ही सीता स्वयंवर हुआ, सीताराम का विवाह संपन्न हुआ, विश्वामित्र मुनि अब हिमालय की तरफ चले गए और उन्होंने सब सिद्धि प्राप्त कर ली। तो यहां पर हनुमान जी हैं जिन्होंने मिलन कराया है सीता और राम का। तो जैसे कि हमने ये प्रश्न पूछा था कि बालकांड को बालकांड नाम क्यों दिया गया है, तो उसी प्रकार से ये प्रश्न यहां पर भी पूछ सकते हैं कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है? क्या इस सुंदरकांड में सुंदर है जिसके वजह से इसे ये नाम मिला? तो कोई कह सकता है जब हनुमान जी सीता के समक्ष जाकर प्रभु रामचंद्र जी की सुंदरता का बखान करते हैं तो शायद रामचंद्र जी की सुंदरता का बखान कर रहे हैं इसके वजह से इसे सुंदरकांड कहा गया है, कोई कह सकता है। तो और कोई व्यक्ति कह सकता है कि स्वयं सीता देवी जो कि त्रिलोक सुंदरी है, क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले सीता को देख रहे हैं, इतना कुछ सुना है सीता के विषय में, तो हो सकता है सीता की सुंदरता का बखान जो हो रहा है उसके वजह से इस कांड को सुंदरकांड कहा गया है। परंतु ये दोनों भी कारण नहीं है, क्योंकि सीता देवी जब वो अशोक वाटिका में लंका में थी तो सीता देवी की सुंदरता छिपी हुई थी। सीता देवी की सुंदरता छिपी हुई थी क्योंकि सीता देवी इतनी दुखी थी विरह में प्रभु श्री राम से। और यहां पर रामचंद्र जी दुखी थे तो उनकी जितनी भी सुंदरता थी वो भी ढकी हुई थी। तो राम और सीता दोनों की सुंदरता तब बनती है जब दोनों का मिलन होता है। तो वास्तविक सुंदरता राम और सीता की तभी होगी जब दोनों मिलेंगे। तो यदि दोनों की सुंदरता हम देखेंगे जब वो मिलेंगे तो जो व्यक्ति उन्हें मिला रहे हैं उनमें कितनी सुंदरता होगी? यदि राम और सीता जब मिलते हैं तो असली सुंदरता उनकी पाई जाती है और वो है हनुमान जी। तो वास्तविक सुंदर व्यक्ति कौन है इस सुंदरकांड में? हनुमान जी, जो कि मिलाएंगे राम और सीता को तब जाकर उनकी वास्तविक सुंदरता दिखने मिलेगी। इसीलिए हनुमान जी को उल्लेख कर ये कांड, इसका नाम है सुंदरकांड। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण का कोई भी चित्र कभी भी वो अकेले नहीं है, हर समय वो किसी ना किसी पार्षदों के साथ रहते हैं। इसीलिए कृष्ण की सुंदरता या भगवान श्री रामचंद्र की सुंदरता को देखना है तो उनके पार्षदों के साथ देखना चाहिए। जैसे इस्कॉन में एक महिला चित्रकार थी जिनका नाम था जदुरानी माता जी। तो ऐसा हुआ कि शुरुआत में एक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण का एक चित्र बनाया। और क्योंकि कुछ पता नहीं था कि राधा कृष्ण कैसे दिखते होंगे तो जब प्रभुपाद जी से पूछा कि अब इनका हमको चित्र बनाना है तो बताइए कैसे दिखते होंगे, तो प्रभुपाद जी ने कहा सुंदर, अति सुंदर। जितना सुंदर हो सके उतने सुंदर। तो अब प्रयास किया बनाने का, जैसे नरसिंह भगवान के विषय में भी जब इन्होंने जदुरानी माताजी ने प्रभुपाद से पूछा कि नरसिंह भगवान का यदि आपने कहा है चित्र बनाने के लिए तो नरसिंह भगवान कैसे दिखते हैं और किस मुद्रा में वो हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा नरसिंह, नर और सिंह दोनों, ये दोनों को एक साथ बनाओ और उनकी मुद्रा है हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से फाड़ रहे हैं। तो स्वयं प्रभुपाद जी ने पोज दिया हिरण्यकशिपु अपने नरसिंह भगवान का चित्र बनाने के लिए। जदुरानी माता जी से कहा देखो ऐसा मैं खड़ा रहता हूं निकालो, तो स्वयं प्रभुपाद जी ऐसा खड़ा होकर वो पोज दिए हैं। तो जो नरसिंह भगवान सारे इस्कॉन के ऑल्टरों पर हम देखते हैं इनका पोज दिए थे स्वयं प्रभुपाद जी। तो इन्होंने क्या किया जदुरानी माता जी ने, इन्होंने कोई ऐसे ही पुराना कोई विदेशी किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चित्र लिया और उसे देखते हुए राधा कृष्ण इनका चित्र बनाया। तो ये चित्र प्रभुपाद जी को दिखाया गया तो क्या हुआ कि उस चित्र में जिसको देखकर बनाया था तो उस चित्र में जो स्त्री थी वो कहीं और देख रही थी, वो पुरुष की तरफ नहीं देख रही थी कहीं और देख रही थी। तो उसे ठीक नहीं किया बल्कि वैसे का वैसा बना दिया। तो राधा कृष्ण के चित्र में क्या दिख रहा था कि श्रीमती राधा रानी हार अर्पित कर रही हैं, जैसे यहां पर हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी हार अर्पित कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, परंतु और कहीं देख रही हैं। तो हार तो अर्पित कर रही कृष्ण को परंतु देख रही हैं पीछे। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा इस चित्र को तो प्रभुपाद जी देखते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है राधा रानी का कोई और बॉयफ्रेंड है इसमें। तो ये जदुरानी माता जी बहुत डर गई कि अभी प्रभुपाद जी मुझे डांटेंगे। तो जदुरानी माता जी को प्रभुपाद ने बुलाया तो थोड़ा सहमी हुई थी, तो कहीं कि गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी, ऐसी मैं चित्र ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, राधा रानी को कृष्ण की तरफ देखना चाहिए था, ध्यान नहीं आया मुझे। तो भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सही बनाया है। वास्तविक रूप में श्रीमती राधा रानी इतना प्रसन्न है इस चित्र से कि आज वो हार तुम्हें अर्पित कर रही है पीछे मुड़कर। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे थे कि कई बार भगवान इतने प्रसन्न होते हैं अपने भक्त की सेवा से कि भगवान अपने भक्त को सुंदर बनाना चाहते हैं। जैसे यहां पर हनुमान जी जो मिलन करा रहे हैं सीता और राम का, तो वास्तविक सुंदरता हुई हनुमान जी की, और इसीलिए इस कांड को कहा गया है सुंदर कांड। और सुंदर आचार्यों ने उत्प्रेक्षा की है, थोड़ा समझने में फिर से बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, तो जग जाइए। यहां बताया गया है हनुमान जी की तुलना शरीर से की गई है और माता सीता की तुलना उस शरीर के आत्मा से की गई है और प्रभु श्री राम की तुलना परमात्मा से की गई है। तो यदि हमें आत्मा को जानना है तो हमें मनुष्य शरीर चाहिए। तो शरीर के द्वारा आत्मा को जानेंगे और आत्मा के द्वारा परमात्मा को। तो यदि रामचंद्र जी तक पहुंचना है हमें तो हमें पहुंचना होगा हनुमान जी और सीता के थ्रू। और उत्प्रेक्षा की है कि हनुमान जी उनकी तुलना शब्द से की गई है, जैसे कोई शब्द होता है परंतु शब्द का यदि अर्थ ना हो, बिना किसी अर्थ के वो शब्द का क्या अर्थ हा? जैसे हम देखते हैं भगवान या शास्त्रों में जो कोई शब्द दिए गए हैं उन सभी शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। जैसे कई बार पाश्चात्य देश में देखते हैं कि लोगों के नाम दिए जाते हैं और जब उन्हें पूछा जाए कि इस नाम का अर्थ क्या है, पता नहीं क्या अर्थ है। और कई बार यदि आप उसका ठीक प्रकार का अर्थ देखो, लिटरल अर्थ देखो, तो उसका मनुष्य जीवन से कोई संबंध नहीं। जैसे किसी का नाम होगा मिस्टर स्टोन, अब यदि उसे आप ट्रांसलेट अनुवाद करो हिंदी में तो श्रीमान पत्थर, या मराठी में क्या कहेंगे, दगड़। तो जब तक किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं तो वो व्यर्थ है वो शब्द। तो हनुमान जी यदि शब्द हैं तो सीता है शब्दार्थ, और फिर रामचंद्र जी हुए उस शब्दार्थ के आनंद, आनंद घन उस अर्थ के। यदि कोई शब्द है उसका अर्थ भी है और उसके अंदर आनंद भी है उस अर्थ के अंदर, तो वो है श्री रामचंद्र जी। और हनुमान जी की तुलना की गई है एक आचार्य से, गुरु से। तो गुरु उनका कार्य क्या होता है, मंत्र देना शिष्य को। तो जब तक मंत्र नहीं देंगे तब तक गुरु का कोई अर्थ नहीं, शिष्य का कोई अर्थ नहीं। तो मंत्र बहुत जरूरी है। तो यदि हनुमान जी आचार्य या गुरु हैं तो सीता देवी हैं मंत्र, और प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए मंत्रार्थ। मंत्र भी हो परंतु यदि मंत्र का कोई अर्थ नहीं, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इसका अर्थ इतना गहरा है, क्योंकि स्वयं ये भगवान का नाम है, इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को इसका अर्थ भी नहीं पता, यदि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी नहीं पता किसे, तो भी ये जो महामंत्र है वो सभी फल देगा उस कीर्तनिया को जो जप कर रहा है। और देखिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इसके अलावा यदि आप कुछ भी प्रयास करो जप करने का, क्योंकि वो मंत्र नहीं है और मंत्रार्थ नहीं है, तो यदि हम कहें जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कोको कोला, कि यदि आप कोको कोला का जप करेंगे 16 माला का, कोको कोला कोको कोला 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 कोको कोको, यदि आप इस प्रकार से कोको कोला का 16 माला जप करेंगे तो कोको कोला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई मंत्र नहीं तो उसका क्या अर्थ होगा। तो इसीलिए यदि हनुमान जी आचार्य या गुरु हैं तो सीता देवी हैं मंत्र और रामचंद्र जी हैं मंत्रार्थ। तो तीनों की आवश्यकता है, मंत्रार्थ के लिए मंत्र की आवश्यकता है और मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो यदि हमें अपने जीवन में उस मंत्रार्थ का अनुभव करना है तो मंत्र होना चाहिए, और मंत्र का अनुभव करना है तो गुरु होने चाहिए। और तीसरा कारण बताया है कि क्यों इस कारण को सुंदर कारण कहा गया। ये सब कारण है क्योंकि हनुमान जी प्रमुख हैं, जो कि जिनकी तुलना शरीर से की गई है, जिनकी तुलना शब्द से की गई है, जिनकी तुलना गुरु से की गई है, इसीलिए इस कारण को सुंदर कारण कहा गया है उनके पीछे। एक और कारण बताया गया है कि सुंदर कारण में प्रभु श्री रामचंद्र जी अंत में आते हैं, उनकी एंट्री सुंदर कांड में अंत में होती है, सुंदर कांड के अंत में। और सीता देवी की भूमिका इस सुंदरकांड में मध्य में पाई गई है सुंदरकांड की, परंतु हनुमान जी उनका चरित्र शुरू से लेकर अंत तक है सुंदरकांड में। इसीलिए इस सुंदरकांड को सुंदर कहा गया है हनुमान जी के पीछे। तो यह है सुंदरकांड का अर्थ कि क्यों इस कांड को आचार्य ने सुंदरकांड कहा है। केवल यह कांड हनुमान जी का गुणगान कर रहा है और इस कांड का प्रारंभ किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा हम करेंगे कल सुबह। तो बहुत ही सुंदर इसकी शुरुआत है। हम थोड़ा सा कल का ट्रेलर दे देते हैं आपको कि इसके विषय में कहा गया है कि जैसे हनुमान जी ने लंका की तरफ जाने के लिए महेंद्र पर्वत से वो कूदे तो 100 योजन वो समुद्र था, तो 100 योजन पार करना है हनुमान जी को एक छलांग में। तो जो उन्होंने छलांग लगाई और उस 100 योजन के बीच कौन कौन से राक्षस आए, कौन कौन से राक्षसों ने और अन्य परिस्थितियों ने अवरोध डाला हनुमान जी की उस छलांग के बीच में, तो आचार्य बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि हनुमान जी की जो छलांग है सीता को खोजने के लिए वही एक साधक की छलांग होती है भक्ति को पाने के लिए। तो बीच में क्या है, 100 योजन का समुद्र और 100 योजन के समुद्र में है ये राक्षस। तो हमारी साधना भक्ति में भी भक्ति या सीता देवी को प्राप्त करने से पहले इस भव सागर में साधना भक्ति में हम पाएंगे ये अवरोध, अलग अलग प्रकार की अड़चने। तो ये एक एक जो राक्षस बीच में आए ये कौन से अनर्थ का प्रतीक है आचार्य बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। तो यदि हम साधना भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही ये प्रसंग सुंदरकांड का सुनना चाहिए जिसमें हनुमान जी दर्शा रहे हैं एक साधक की भूमिका, जो 100 योजन का समुद्र है उसको भव सागर की तुलना की गई है, सीता देवी की तुलना की गई है भक्ति से जिसे हमें प्राप्त करना है, और ये सब राक्षस जो बीच में आएंगे और हनुमान जी ने किस प्रकार से इनसे व्यवहार किया। तो अलग अलग जो अनर्थ हैं हमारे अंदर हमारी भक्ति में आएंगे, कैसे हमें उससे जूझना है, कैसे उस पर विजय प्राप्त करनी है, ये हम सीख पाएंगे श्री हनुमान जी से। और यदि आप लोग इच्छुक हैं इसे सीखने के लिए तो कल सुबह ठीक 8 बजे आप लोग पहुंच जाइए और हम देखेंगे हनुमान जी की छलांग को। बोलो सियावर रामचंद्र जी की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।